कितना है प्यारा
साथ तुम्हारा
रोशनी ही रोशनी आती नजर है अपना भंवर का डर ना ही फिकर है ना ही फिकर है हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा
ओम शांति। बुद्धि की खुराक आत्मा की खुराक लेने के लिए तैयार है तो देखो हमारे बीच आदरणीय रामनाथ भाई जी पधारे हैं तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं बाबा की ये अनमोल रतन 40 वर्षों से ज्ञान में है 35 वर्षों से अपने यज्ञ की पांडव भवन मधुबन में सेवाएं दे रहे हैं अनेक स्थानों पर भी जाकर अपने योग की गहन अनुभूतियों के बारे में बताया है कराया है बहुत सहज तरीके से आप ज्ञान को सुना करके अंदर में उतार लेते हैं आपकी विशेषता है कितना भी कोई प्रश्न लेकर के आए बहुत सहज तरीके से उसको ऐसे कन्विंस कर देते हैं जैसे कोई बात ही नहीं थी ये आपके सुनाने की बहुत सुंदर विशेषता है तो आज हमारे बीच हमें भी आगे बढ़ाने के लिए आपकी प्रेरणाएं मिलेंगी यूं आप धार्मिक प्रभाग में मधुबन हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। आज का आपका विषय भी बहुत सुंदर है कौन सा विषय है जानते हैं आप याद है सुबह सुनाया था कौन सा है किसी को भी याद नहीं देखो ब्राह्मण जीवन में सुख शांति का आधार बहुत सुंदर विषय है सबको यही चाहिए ना तो आपका हमारे बीच में स्वागत है स्वागत है स्वागत है
ओम शांति। बहन जी ने एक प्रश्न पूछा आप सबसे और आपने हाँ कर दिया। बहन जी ने पूछा कि खाना खा के आ गए तो आपने कहा हाँ किया तो पहले सात दिन में भी आपने खाना खाया था तो अभी रात को भी खाना खाया तो बाबा कहता है एक शब्द कि निरंतर क्या स्मृति चाहिए। हाँ मैं आत्मा हूं ये रूहानी सभा है तो शरीर को अगर आप कहते थे बहन जी शरीर को खाना खिलाया अगर ये स्मृति होती थी तब कहते थे कि आपको निरंतर मैं आत्मा हूं यह स्मृति है। एक है ज्ञान और एक है स्मृति है ना स्मृति स्वरूप। तो अगर निरंतर नेचुरल है ये क्योंकि ये शरीर बाद में पहले आत्मा है बाद में शरीर आया तो तब बाबा कहते हैं अनादि स्मृति में निरंतर रहो एक दूसरों को याद दिलाओ। किसी को पूछो माताजी खाना खाया हाँ कहा तो शरीर के भान में है अपने को शरीर समझ रहे हाँ शरीर को खिलाया। आत्मा का भोजन ज्ञान और योग आपने पहले खाना खाया है और अभी शरीर को खिलाया ये अगर स्मृति है तो आत्मिक स्मृति है। अगर आत्मिक स्मृति है तो कहा गीत सुना अभी क्या सुना हमारे साथ कौन है हाँ भगवान जिनके साथ है तो उनको आंधी तूफान क्या होंगी सिर्फ देखो अगर एक कोई करोड़पति मंदिर बनाता है, लेकिन वो व्यक्ति जाके मूर्ति को हाथ लगा सकता है, पूजा कर सकता है? नहीं, सिर्फ ब्राह्मणों को ही अधिकार है। ब्राह्मण ही मूर्ति को हाथ लगा सकता है, पूजा कर सकता है, उसके नजदीक जा सकता है। कितना करोड़पति हो, कितनी मेहनत करके मंदिर बनाया, तो दूर से ही हाथ जोड़ना, नजदीक जा नहीं सकता है। ऐसा नहीं कह सकता मेरा मंदिर है। तो बाबा ऐसे बच्चों को तैयार कर रहा है कि ब्राह्मण बच्चे। तो ये अगर हमें आत्मिक स्मृति है, क्यों, ये रूहानी सभा है, जिस्मानी नहीं है। दुनिया में भी बहुत पढ़ाई पढ़ते हैं, शास्त्र सुनते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वो सारी शरीर की पढ़ाई है, और ये आत्मा को स्वस्थ करने के लिए पढ़ाई है। आत्मा हेल्दी हो, शक्तिशाली हो, अगर आत्मा है तो आत्मा माना मन, मन माना शुद्ध विचार। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों के लिए नंबर वन पवित्रता है, ब्राह्मण के लिए नंबर वन पवित्रता है, और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर वन राजयोग भी यही है और पवित्रता भी यही है। इतनी सिंपल चीज है। बहुत बड़ी बड़ी चीज करने जाते हैं ना, तो जो फाउंडेशन है वो मजबूत नहीं होता है। तो फाउंडेशन है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, सहज राजयोग का। सहज राजयोग क्या है? और पवित्रता भी नंबर, दुनिया में सन्यासी कहते हैं कोई स्त्री और पुरुष एक जगह नहीं रह सकते हैं, लेकिन सारे परिवार जो यहां बैठे हुए कौन हो, सब एक ही परिवार में रहते हैं, है ना, तो कैसे रहते हैं? तो नंबर वन पवित्रता यहां है। तो वो कौन सी है? तब ये दो अगर चीज हमारे जीवन में है तो सुख और शांति है। बहुत कुछ नहीं चाहिए, बहुत करने जाते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करने। ये मनुष्य की कलयुगी दुनिया की एक होड़ है, दौड़ है, बहुत कुछ कमाना चाहता है। हाँ कमाया, खाएंगे कितने आप? दो ही रोटी खाएंगे, 10 रोटी तो नहीं खाएंगे ना। इसको कहते हैं हबज, लोभ। हाँ जमा किया, रखा, इधर छोड़ के जाना है। कोई लेके जा सकते हो? ले जा सकते तो बताओ। तो ये समझ है, ज्ञान है, इसलिए कहा ये सुनना, पढ़ना, श्रवण करना कोई फायदा नहीं। कितनी दफा आप मुरली सुनो, मैं 10 दफा मुरली पढ़ता हूं, कोई फायदा नहीं है, संस्कार परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए कहा लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। श्रवण से आचरण नहीं, श्रवण के बाद मनन चिंतन चाहिए। खाना खाने से मोटा नहीं बनता है, हजम करना चाहिए। तो ब्राह्मण अगर आप सच्ची कहेंगे, आप बाबा ने तो बहुत सारे बताया, उसमें हमने देखा दो चीजें। आज की कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी, इस वातावरण में रहते हुए भी हम ये कर सकते हैं, सहज, कोई कठिन नहीं। चलते फिरते 24 घंटा काम करो, संसार में रहो, इतना तक नहीं, बाबा ने इतना तक कहा बच्चे गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, कुछ नहीं करो, सिर्फ एक काम करो बस, आप 108 की माला में आ सकते हो। देखो 2008 के अव्यक्त मूल्य ले लो, 2004 के अव्यक्त मूल्य ले लो, इन दो मूल्यों में कहा बाबा ने कि बच्चे गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, फिर भी आप सिर्फ एक काम करना है, आप 108 की माला में आ सकते हो। बहुत जन्मों के बोझ है, बहुत जन्मों के बोझ को उतारना चाहते हुए 2004 के अव्यक्त मूल्य में सुनाया, बच्चे एक का 10 गुना दुआएं दे दो, इतना सहज करके दे। संपूर्ण पवित्रता भी सुनाया, फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी। शरीर स्वच्छ हो, मन स्वच्छ हो, क्योंकि मन सारी बीमारियों का कारण है, सारे सुख दुख का कारण माइंड इज रूट कॉज। तब कहा मन जीत जगत जीत, मन को जीत लो। तब दुनिया ने कहा, आज भी बाबा ने कहा, मन एक घोड़ा है, तो घोड़े को कौन रोकेगा? अगर मैं बहन जी को कहता हूं बहन जी गुस्सा नहीं करो, अगर मुझे गुस्सा आया तो मुझे कौन समझाएगा? कौन बताएगा? बताओ, आपको तो मैंने कहा बहन जी गुस्सा नहीं करो, अगर मुझे ही गुस्सा आ गया तो मुझे कौन समझाएगा? औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है, स्वयं को कौन पढ़ाएगा? खुद में दो आत्मा है नहीं, एक ही है, तो कौन किसको पढ़ाएगा? कौन किसको पढ़ाएगा? स्वयं कौन पढ़ाएगा? आत्मा किसको पढ़ाएगा? शरीर को? मन अलग आत्मा अलग नहीं, फिर कौन किसको पढ़ाएगा? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। हाँ देखो इतने लेट किया आपने, बहन जी को बताते आपने नंबर वन लेना चाहिए ना, तो ये मेन चीज है। तब दुनिया में ये आया है कि हम औरों को पढ़ाना चाहते हैं, नहीं स्वयं को पढ़ाओ। तब बाबा ने कहा स्व परिवर्तन, हरेक का अपना अपना ड्रामा है, हमारा एक लक्ष्य होता है इनको ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। क्या मैं जैसे चाहे वैसे और कोई काम कर सकते हैं क्या? जो हमारे अंदर आदत बनी कि टीवी के चैनल घुमाओ तो चेंज कर सकते हैं, ऐसे हम औरों के स्वभाव संस्कार चलन व्यवहार कर्म को चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। इतनी पावर है, है पावर है, औरों के स्वभाव संस्कार चलन को चेंज कर सकते हो? नहीं है ना, हर एक का ड्रामा में अपना पार्ट है। ये बाबा ने ज्ञान दिया पहले, ये समझ में आने के बाद हमारे पास ब्राह्मणों के तीन कर्म बाबा ने बताया। ब्राह्मण कौन? कम से कम तीन धारणा चाहिए। एक, सवेरे सवेरे शक्ति का स्नान चाहिए, अर्थात सवेरे सवेरे अमृत वेले योग चाहिए, उसको कहेंगे कम से कम ये तीन ब्राह्मण धारणा चाहिए। बहुत धारणा चाहिए तो अगर ये तीन है बाकी सब अपने आप आ जाएंगी, एक से कनेक्टेड है। दूसरा, ज्ञान स्नान भी चाहिए, ज्ञान भी जरूरी है। शक्ति है, शक्ति का दुरुपयोग न हो तो उसके लिए समझ भी चाहिए, ज्ञान के बिगर भी गति नहीं। ये दोनों अगर है तो धारणा अर्थात पवित्रता, मुख्य धारणा है पवित्रता, वो अपने आप हो जाती है, एक दूसरे से लिंक है। अगर सबसे पहले योग नहीं है, देखो आप अभी भी देख लो आप अपने आप से, कभी भी कोई गलत कुछ करता है, गुस्सा करता है, दुख देता है, आपको पता है, याद आता है, अरे बाबा ने कल कहा था गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहते हो? कोई चाहता है गुस्सा करना, गलत विचार करना कोई चाहता है? नहीं, पता है ऐसे विचार नहीं करना चाहिए। पता होते हुए भी, जानते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी क्या हो रहा है? पता था मुझको, फिर भी क्यों? क्या नहीं है हमारे पास? शक्ति नहीं है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है। गाड़ी चलाने वाले को पता है सामने वाला आके टकराएगा, इतनी स्पीड से आ रहा है, वो बचाना चाहता है, ब्रेक भी लगाता है, लेकिन ताकत नहीं है गाड़ी को वहां का वहां रोके। तो सिर्फ ज्ञान सब कुछ नहीं, नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग, एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी, अनुभव चाहिए, शक्ति चाहिए। ये दोनों अगर है, इसका रिजल्ट अपने आप जीवन में जो हम चाहते हैं, आज बाबा चाहता है, सब चाहते हैं, आप भी चाहते हो, हम भी चाहते हैं, सारा परिवार भी चाहता है, हर एक व्यक्ति, कोई भी गुस्सा करना नहीं चाहता है, गलत सोचना नहीं चाहता है, गलत बोलना नहीं चाहता है, चाहते हुए भी नहीं हो रहा है। कारण क्या हो रहा, हमारा श्रवण बहुत हो गया है, सुनते बहुत है, नोट करते हैं, लेकिन आचरण नहीं हो रहा है, उसकी विधि चाहिए, वो विधि नहीं होता है। अगर देख लो आप बहुत सिर दर्द हो रहा है, आप बैठे बैठे को सिर दर्द जाओ, सिर दर्द जाओ, 100 दफा बताओ जाएगा? दवाई तो लेनी पड़ती ना, शरीर की बीमारी के शरीर के लिए दवा है, आत्मा की बीमारी मिटाने की भी दवा है, तो उसके बिगर सिर्फ ऐसे हट करने से भी नहीं होता है। तब बाबा ने कहा विधि पूर्वक अभ्यास, सिस्टमेटिक एफर्ट, विधि नहीं है, मेहनत करते रहो तो प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए सबसे पहले कहा एक चाहिए, ब्राह्मण बनने के बाद क्या चाहिए? हर एक पवित्रता। पवित्रता किसको कहेंगे? जो पवित्र है वो योगी है, और जो योगी है वो पवित्र है। पवित्र बनो योगी बनो कहते ना, तो कौन सी पवित्रता ये? तो बाबा ने कहा मैंने शादी नहीं किया, ये ब्रह्मचर्य ये पवित्रता है? नहीं, ब्रह्मा के आचरण। तो उसको बाबा ने सिंपल कर दिया, आप एक ही दिन करके देख लो, बहुत नहीं चाहिए। कल सवेरे, आज रात को सुनो, अभी कल सवेरे उठते ही अपने आप को एक पाठ पढ़ाओ, एक ही सिंपल काम, कि कल सवेरे से रात तक आपको जरूर एक दूसरों से बोलना जरूर है, मौन रखना नहीं, बोलना जरूर है, मंजूर? मौन भट्टी कहते हैं, लेकिन बोलना जरूर है, लेकिन मुख से नहीं बोलना है। फिर आप कहेंगे खाना कौन खाएगा? डाइनिंग टेबल पर बैठते हो तो मुंह खोलना खाना खाने के लिए, सिर्फ एक दिन। और बोलना जरूर है, किसी पर नजर गई, शुभ बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। अभ्यास करो। हम सोचते मन आदत बन गया, अरे बहन जी इनको देखते भाई जी तो नहीं कहेंगे, इनको देखते माता जी तो नहीं कहेंगे, इनको देखते याद आएगा जरूर, हाँ 2 साल पहले इतने बहुत गुस्सा किया था, हाँ किया था भी, लेकिन 2 साल आज तो नहीं किया। लेकिन आपको जैसे कहा हवा के अंदर सुगंध दुर्गंध है, आपको पता नहीं चलता, अंदर जाने के बाद पता होता है, विचार आने के बाद पता चला, अरे ये विचार कहां से आया, फिर क्या कर सकते हो आप? आ गया, आने से पहले प्रबंध करो। तब कहा बाबा ने मनजीत, और ये नंबर 1 पवित्रता है। इसको शास्त्रों में भी कहा, अधम ते अधम महापापी है, बहुत खराब है। और एक पत्थर मारेंगे? नहीं, उसका भी कल्याण करना है, उसके ऊपर दया क्षमा करना है ना? तो वो क्या है? वो ब्राह्मण जन्म का नंबर 1 ड्यूटी है। तब बाबा ने कहा रूहानी सर्जन तो है, सुप्रीम सर्जन, तो हम बच्चे कौन होंगे? है ना, मास्टर सर्जन होंगे ना। खराब व्यक्ति को ही ठीक करना है ना, अच्छे व्यक्ति तो को नहीं चाहिए। हॉस्पिटल में कौन आता है, अच्छा व्यक्ति आएगा? नहीं। तब क्यों बाबा के पास आए हम? तो हमें पवित्र बनना है, संपूर्ण प्योर बनना है, तो उसके लिए अपने आप तो नहीं बनेंगे ना। तो कल एक काम करो, और कल आज रात को सोएंगे आप तो देखना किस प्रकार के स्वप्न आते हैं। बीमार कैंसर पेशेंट को 1 साल 2 साल 3 साल तक भी कुछ पता नहीं चलता है, कैसे कहेंगे इनकी बीमारी है इनको है? आज साइंस ने साधन बनाया, दिखा सकते हो क्या? पुण्यात्मा पापात्मा दिखा सकते हो क्यों? कौन सा पाप है मेरे अंदर कौन बता सकते हो? हाँ, अब भी आप देख सकते हो मैं कौन सी आत्मा हूं। जब रात को सोते हो आंखें बंद करके, स्वप्न कहां से आए? दिन में तो ये है, ये खराब ये खराब ये खराब, मैं अच्छा हूं, लेकिन रात को कोई नहीं आंखें बंद करके सोए, स्वप्न कहां से आए? आत्मा ने शरीर में आने के बाद जो जो कर्म किया है, एक एक सेकंड अंदर रिकॉर्ड हुआ है। पहले स्वप्नों में आता है, फिर मन में आता है, फिर कर्मों में आता है। इसलिए एक महावाक्य सदा याद रखो कि शरीर में आए अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा कोई भी कर्म करते हो आप, किसी भी कारण से, हर कर्म मेरे अंदर रिकॉर्ड होता है, और उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। उसको कहा इंग्लिश में, देयर इज नो एक्सक्यूज, मुझे पता नहीं था, चाय इन्होंने पिलाया, पिया तो आपने ना, उसका असर आप पर पड़ेगा ना। देने वाला बहुत कुछ देगा, लेने वाला के ऊपर है। क्यों? मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है। एक प्राणी को बांध के रख सकते हैं आप, मनुष्य को नहीं रख सकते हो, क्योंकि मनुष्य के पास एक शक्ति विशेष है, बुद्धि, समझ है ना, तो समझ को यूज करो। तो नंबर 1 पवित्रता कल एक दिन करके देख लो, कल रात को आप सोएंगे, कब सोए कब उठे आपको पता ही नहीं चलेगा, इतनी गहरी नींद आ जाएंगी। क्यों? मन किसी को देखकर गलत विचार के, अपवित्र मन, अस्वच्छ मन गहरी नींद करेगा? मन स्वच्छ चाहिए। तब बाबा ने नंबर 1 राजयोग ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, औरों के प्रति शुभ सोचो। कैसे सोचो? मैं नहीं सोच सकता हूं, इनको देखते पता चले इन्होंने बहुत परेशान किया था, आएगा विचार, ये सामने आएगा, लेकिन मुझे किसने कहा ये बहुत कड़वी दवाई है, ठीक होना है तो लेना पड़ेगा ना, है ना। तो इसलिए सर्वशक्त बाबा से हम प्यार है कहते हैं, तो बाबा ने कहा मुझे मददगार कौन, बच्चे ही, योगी तो बच्चे चाहिए। तो ये एक अभ्यास करके देख लो, कल बोलना जरूर है लेकिन मुख से नहीं बोलना है, मंजूर। किसी को देखते ही इधर बहुत लोग चलते फिरते, अभ्यास करके देख लो, एक दिन करेंगे आप ये अनुभव, आपको कभी भी अमृत वेले सोना नहीं देगा, आपके तो योग नहीं लगता है, नींद आ रही है। अगर किसी को दर्द हो रहा है बहुत, डॉक्टर के पास आज नहीं कल जाएंगे, चलेगा, बहुत दर्द हो रहा है, नहीं कहां से भी दवाई, कितना भी खर्चा, ऋण लेकर के भी दवाई लेंगे, क्यों, दर्द हो रहा है। यहां भी दर्द होना चाहिए, मेरे अंदर कौन से पाप है, अगर आज मिटाया नहीं कल मन में आएगा, परसों बाहर आएगा, फिर 5000 साल के लिए फिर से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो उसके पहले, जागृत होने से पहले मिटाना है, और मिटाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल, मेहनत भी नहीं, आंखें खोल के देख लो, आंखें बंद नहीं करो, अच्छी तरह से देख लो, देखते ही शुभ बाबा इस आत्मा का कल्याण करो, इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो, इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, ये कर सकते हैं। ये नंबर वन पवित्रता है, और ये नंबर वन योग भी है, क्योंकि मन सारी बीमारियों का कारण, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे कहते हम, है ना। तो सोच कैसे चेंज हो जाएगा, अपने आप अच्छी बातें याद नहीं आएंगे ना, तो मन स्वच्छ हो पहले, कर सकते ये कि तकलीफ है। ये ब्राह्मणों के लिए नंबर, ब्राह्मण उसको कहा, तब आपका मन स्वच्छ है, अपने आप देखो, दृष्टि, वाणी, कर्म, कपड़े में थोड़ा काला दाग लगेगा तुरंत दिखाई देगा, क्योंकि मन स्वच्छ है। तो अपने आप घर स्वच्छ होगा, कपड़े स्वच्छ होंगे, खाना थोड़ा सा कुछ दिखाई देगा, नहीं ये ठीक नहीं है, मन स्वच्छ है, अपने आप सब परिवर्तन हो जाएगा। तो ये पहला एक कदम है ब्राह्मणों का कि मन को जीत लो। फिर भी तरीका बताता हूं दूसरा, अगर किसी को देखकर गलत विचार आ गया तो क्या करेंगे, हाँ बुद्धि है, बच्चे कुछ गलत करते मारते नहीं, बुद्धि, माँ बाप समझाते हैं, मुरली सुनते हो, हाँ इन्होंने बहुत दुख दिया था, विचार आता है, ये व्यक्ति है, हाँ बाबा ये आपका बच्चा है, इसको ठीक करना चाहिए आपने, इसको आपने शक्ति देना, आप कहते हैं मैं विश्व को परिवर्तन करने आया हूं, इसको ठीक करो, ये आपका बच्चा है, शुभ भावना फिर आई, फिर भी वही आया। अगर किसी कारण से गलत भी आया तो अपने आप को पढ़ाओ, ये भी बाबा का बच्चा है, इनका भी कल्याण होना चाहिए, अपने आप को, नहीं इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये चला रहे हो, हाँ एक मिनट इसने गुस्सा किया, हमने कितना रिकॉर्ड भरा, एक घंटे का रिकॉर्डिंग किया, तब कहा अपने आप को पढ़ाओ, मंजूर, एक समझ में आया। लेकिन आप कहते पढ़ाना तो चाहते, याद नहीं रहती है, मुरली सुनी हुई। अब उसके लिए एक तरीका बताता हूं, मुरली किसी को, हमको भी याद नहीं रहती है एक बार सुनने से। इंग्लिश में कहा हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, शरीर को कितना दफा खिलाते हो, आत्मा को कितना दफा खिलाते हो, सवेरे एक दफा मुरली सुनाई फिनिश, है ना। आत्मा को भी 3 दफा खिलाना चाहिए, कल से शुरू करके देख लो कि अच्छी तरह से ध्यान से मुरली सुनते बैठो, सुनते सुनते देखना बाबा ने मेरे लिए क्या कहा आज, आज बाबा ने मेरे लिए ये कहा। मुरली में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार एक मुरली के पॉइंट ले लो, और भाई आप लिख करके अपने जेब में रखना, नहीं तो डायरी जाके कमरे में रख दिया, कल सवेरे आके खुलेंगे फिर, है ना। एक पॉइंट लिख करके जेब में रखना जो आपको अच्छा लगा, माताएं लिख करके अपने पास रखो, किचन में घर जाने के बाद, किचन में रहते हो, अपने पास मुरली के पॉइंट रखो। तो यहां से जाने के बाद नाश्ते पर बैठते हो, 2 हाथ दिया सबको, एक हाथ इधर जा रहा है, एक हाथ आत्मा को पढ़ाओ। तन को भूख लगती है तो मन को भी लगती है, दिन में भी आश्चर्य, एक बार खाना खिला सवेरे खाते शाम को क्यों खा रहे हो, भूख लगती है, आत्मा को भी भूख लगती है, तो दिन में एक दफा खिलाओ, रात को एक दफा, ढूंढने जाओ याद नहीं रहता है, तो जेब में होना चाहिए, नॉलेज मस्ट बी अवेलेबल। ऐसे नहीं ज्ञान एक जगह लिख के रखा और किसके लिए लिखा हो, किसके लिए मुरली सुनी, खाने के लिए, खाना क्यों कमा रहे हो, खाने के लिए, रखने के लिए नहीं है ना। तो तीन दफा मिनिमम अगर आप एक हफ्ता करो, देखो आप जितने इधर बैठे हो बाबा के बच्चे, नए तो कोई नहीं सब पुराने हैं, फिर भी आप अपने सच्चे दिल से पूछ लो, आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया हो ऐसे कोई पुण्य आत्मा है तो हाथ उठाओ। हाँ इंदौर में है, हाँ देखो एक पुण्य आत्मा, एक ही बस, एक लक्ष्मी एक नारायण भी है, दो ही बस, दो नारायण दो लक्ष्मी है, चलो सत्युग में दो तो हो गया, दो ही बस, इंदौर से दो ही जाएंगे। हाँ तो बाबा तो सभी बच्चों को ले जाना चाहता है, तो अभी पुरुष इसलिए तो मधुबन में आए ना। हाँ तो अभी याद रखो, क्रोध का अंश रह गया तो सत्युग में जा सकते हो नहीं ना, तो ये परिवर्तन करके जाना है, तो उसके ऐसे परिवर्तन अपने आप नहीं होगा। कुछ हर एक चाहता है कि मैं क्रोध को छोड़ू, तो ऐसे छुपता नहीं हो, सिर दर्द हर एक कोई नहीं चाहता है, अपने आप जाता नहीं, दवाई लेनी पड़ती है। जो एक मुरली के पॉइंट कहा, एक हफ्ता अपने जेब में मुरली के पॉइंट रखो, मिनिमम तीन दफा अपने आप को पढ़ाओ, ये दवा है। गुस्सा क्यों आ रहा है, बेहोशी में आता है, तो बेहोश वालों को होश में कैसे लाए, तो ये मुरली संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी सुंगाओ तो होश में रहता है, बार बार एक दफा नहीं, सवेरे दिन में शाम को सारा दिन होश में रहना चाहिए, सिर्फ एक ही मुरली के पॉइंट बस। मंजूर, कोई तकलीफ है, जेब में रख सकते हैं, हाँ पैसे नहीं रखो भले, लेकिन मुरली के पॉइंट जरूर रखने के बगैर घर से बाहर नहीं जाना। मुरली सुनते हो छोटे से कागज में लिखो और जेब में रखना, खाना खाना बैठते भगवान ने हरेक को दो हाथ दिया, एक हाथ शरीर को खिलाओ एक अपने आप को खिलाओ, कि दोनों स्वस्थ चाहिए। मंजूर, ऐसे पांच तरीके हैं, और भी तीव्र गति से जाना चाहते हो आप तीन कर सकते हैं आप। अगर सारे दुनिया में आज के बाबा के बच्चों के पास मोबाइल है, अगर इस भाई ने इधर उधर के समाचार सुनाया, सुनना पड़ता है क्योंकि परिवार है, सन्यासी तो नहीं, तो वो सुनाता है क्या करे, हाँ सुनो, सुनते सुनते उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए मेरे ऊपर, तो हो गया भाई जी एक सेकंड ठहरना, जेब से मुरली के पॉइंट निकाल के पढ़ के बताओ, याद नहीं रहता है। अगर उसने नेगेटिव सुनाया, कब कर्म करते करते दाग पड़ता है, छोड़ देंगे बाद में सीख करेंगे तो पक्का हो जाएगा, तुरंत साफ कर लो। उसने नेगेटिव दिया, आपने पॉजिटिव दिया, वाइप आउट हो गया। लेकिन मुरली के पॉइंट जेब में होगा तो सुनाएंगे ना, तो याद किसी को नहीं रहती है। अगर तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हो कि संसार में रहना है, जंगल में तो नहीं रहते हम, कोई इधर की समस्या सुनाएगा, कोई और कुछ सुनाएगा, बिजनेस भी करना है, सब कुछ है, ऐसे नहीं कि नहीं है, एकदम देवता तो नहीं बने, कलयुग है, लेकिन उसका तब कहते हैं प्रिकॉशन। बहुत तेज बरसात पड़ती है, क्या करो, हाँ छाता है, छाता लेके जाओ, अपना प्रबंध करो। हम दुनिया को चेंज नहीं कर सकते एकदम, पहले स्वयं को प्रबंध करो, सेल्फ प्रोटेक्शन। हाँ हमको हमारे घर में वाइफ हमारी बोलती है, पति बोलता है, बच्चे परेशान, हाँ करते हैं, तभी तो कलयुग है ये, लेकिन मैं उससे कैसे बचूं, अपने को बचाने के तरीका ढूंढो। मंजूर, अब तीसरा माताओं के लिए, माताएं कहती है भाई जी हमारे पति बच्चे ज्ञान में नहीं चलते कोई, हाँ नहीं चलते, लेकिन उनको ज्ञान में चलाना जरूर है, बीमार व्यक्ति को दवा जरूर देना, दवा के बगैर बीमार ठीक होगा ही नहीं, बच्चा अगर बीमार है रोता है दवाई देना ही उसको, दवाई के बगैर गति नहीं, कैसे देंगे, नहीं खाता है वो। परिवार वालों को ज्ञान सुनाना जरूर है, पति को जरूर सुनाना, बच्चों को जरूर, लेकिन मुख से सुनना नहीं चाहते हो, कैसे सुनाए, सिंपल तरीका है, माताएं खाना बच्चों को पति को खिलाते हो, हाथ से खिलाते हो, खाना खिलाते हो, मन क्या कर रहा है, खाली है, उस समय याद करो बाबा आपने मुझे कहा गुस्सा नहीं करो, ये भी तो आपका बच्चा है, इनको भी आप बताओ, मन में आज के मुरली के पॉइंट याद करो, मन का संकल्प मन को पहुंचता है, खाना जो खिला रहे हो तन को पहुंच, तन और मन माताएं दोनों काम कर सकती है, नहीं तो खाना खिलाते खिलाते और इधर उधर की बात चलती है। आत्मा को भी स्वस्थ करने के लिए मुरली के पॉइंट याद करो। तीन दफा अगर आप खाना खिलाते हो शरीर को, तीन दफा आत्मा को भी खिला सकते हैं ना, तकलीफ है कोई? हाँ, याद में रहती है, इसलिए कहा लिख के रखो, एक ही पॉइंट रखो बस। मंजूर? इसमें कोई तकलीफ है? तकलीफ है तो बताओ। ऐसे नहीं बाबा साहब बैठे रहो पाव दर्द कर रहा है, नहीं बाबा हठ योग नहीं कहता है, मेहनत नहीं करो, चलते फिरते करो, कर्म करो। हाँ, उसके साथ एक याद है, जब ट्रैफिक कंट्रोल बचता है तो क्या करते हो? गीत सुनते हो? हाँ, क्या करते हो? बाबा को याद करो। कहा तो याद कैसे कर? बाबा ने जो कहा उसको याद करना है। अरे आज सवेरे बाबा ने ये कहा था, हर ट्रैफिक कंट्रोल पर आज के मुरली के पॉइंट याद करो, तो इसको कहा बाबा को याद। बाबा बाबा भक्ति में कहते, बाबा बाबा तो नहीं करेंगे, बाबा ने मुझे सवेरे क्या काम दिया था? बच्चे आज ये काम करो, बार बार अपने को याद दिलाओ। ये भी हो सकता है ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर गीत सुनते रहेंगे, खाली मन तो रहता नहीं है, मन को काम दे दो। क्या काम दे दो? पॉजिटिव विचार दे दो, शुभ विचार। शुभ विचार कहां से लाएंगे? रोज देता है बाबा सवेरे, है ना, आज का काम आज, कल दूसरा देगा, रोज देगा, रोज नए नए पॉइंट्स ले लो, तब कहूंगा आप पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। अपने आप नहीं, पढ़ाई चाहिए, यहां सिर्फ भावना से काम नहीं चलता है, कुछ करना चाहिए। तब देखना जो हमारे अंदर क्रोध आता है, ये दवा है क्रोध को मिटाने की। एक मुरली के पॉइंट एक हफ्ता जेब में रखो, मिनिमम तीन दफा अपने आप को पढ़ाओ, और जितनी दफा बाबा ने कहा ज्ञान के संस्कार बनाओ, अविनाशी संस्कार बनाओ। ये भी कहा बाबा ने, अगर एक मुरली के पॉइंट आज किसी को सुनाते हो आप, एक जन्म के लिए आप धनवान बनते हो, क्योंकि संगम का एक का पदम गुना जमा होता है, एक का पदम गुना है, कितना जन्म के लिए धन, ये धन है, ज्ञान धन, अविनाशी धन देते हो। अगर किसी को एक करोड़ रुपया दे दो, खाया पिया खत्म, सत्युग में जाके देगा वापस? नहीं, खत्म हो गया, लेकिन ये धन अविनाशी है, अविनाशी ज्ञान धन दान करो। रोज किसी ने अगर इसने फोन किया, बात करो एक घंटा, बिजनेस का करो, कुछ भी करो, लेकिन तुरंत भाई जी हो गया निकाल के तैयार रख दो, आज बाबा ने ये कहा था। अगर अज्ञानी है, ज्ञान में नहीं चलता, उसको भी सुनाओ, बाबा ने कहा समाचार सुनाते हो, उसको बाबा ने कहो आज मैंने किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी, आपको बताओ। किताब बताओ, भगवान ने कहना, बाबा ने कहना, मैंने किताब पढ़ा था, माना हमारे द्वारा मुख द्वारा शुभ समाचार संसार को देना चाहिए, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। इसको कहा ब्राह्मण के साथ सदा क्या रहता है, क्या ब्राह्मण किसको कहते हो, क्या करता है? शुभ प्रवचन करे, ज्ञान सुनाएगा, है ना, तब उसको कहा उसके पास सदा रहना चाहिए। कहां से आएगा ये? ध्यान रखेंगे तो आएगा ना, अपने आप तो नहीं होगा ना। एक ही मुरली के पॉइंट, अपना भी कल्याण हो, औरों का भी हो, परिवार का भी हो, समाज का भी हो सकता है। अगर ये करने जाओ तब देखना जो परचिंतन, ये ऐसा है वो ऐसा है, ये काला है ये गोरा है ये लंगड़ा है ये करोड़पति है, ये सोचने के लिए समय नहीं है। अगर आपको मैं को बहन जी को देखते बहन जी नहीं सोचो, ये अज्ञान है। बहन जी को देखते बहन जी याद आएंगी, दिखाई देंगी, आत्मा दिखाई नहीं देता है। हाँ, तब कहा बहन जी को देखो, नहीं कहा आज देख लो, आराम से आके खोल के देख लो, देखते ही मन में शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसको शांति की शक्ति दे दो। ये है आत्मिक दृष्टि। हमें पता है ये शरीर के अंदर आत्मा है, कौन सी आत्मा है? वो शुभ बाबा का बच्चा है। इसको कहा बाबा ने परसों, तीन दिन पहले एक बहुत अच्छा समाज संदेश पॉइंट सुनाया था, बच्चे जिस्मानी आंख से, आंखों से नहीं देखो, कैसे देखो? बाबा ने कहा ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से कैसे देखेंगे? ज्ञान माना समझ, नेत्र माना बुद्धि, ज्ञान बुद्धि को समझ है इस शरीर के अंदर शुभ बाबा का बच्चा, रावण का बच्चा नहीं है, ये समझ, ये समझ से देख लो। ज्ञान की दृष्टि से आत्मा चमकता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है, ज्ञान की दृष्टि किसको? ज्ञान माना समझ, समझ कहां है? बुद्धि के अंदर है। किसी को देखते समझ से देख लो, ये कौन है, किसके बच्चे है ये, ये दृष्टि होनी चाहिए। ये बंद कर दे। तो और एक बात जानना चाहिए कि ब्राह्मण बनने के बाद स्वयं को, क्योंकि बाबा ने कहा बाप बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा, है ना, अपने आप तो नहीं। तो अब बच्चे कौन है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों को इनको उनको इनको सेवा का बहुत लक्ष्य न रखते हुए दूसरों की सेवा, स्वयं को संपन्न बनाओ। स्वयं पर अगर ध्यान है, आपकी दृष्टि, आपकी बोल, आपकी चलन अपने आप सेवा करती है। तो उसके लिए एक लक्ष्य याद रखना, ब्राह्मणों के ऊपर 5 प्रकार का बोझ है, जिम्मेवारी है। बोझ ने कहे हो, जिम्मेवारी है स्वयं को संपन्न बनाने के लिए। एक नहीं, 5 प्रकार की है। अगर ये समझ लेंगे जिम्मेवारी है, तो आप अपने को संपन्न बनाने में व्यस्त रहते हो। तो परचिंतन, इधर वो कौन, ये क्या कर रहा है, ये जो हरेक को अपना अपना पार्ट है, मुझे क्या करना, एक लौकिक बोझ है हमारे ऊपर। एक अलौकिक की पढ़ाई लेते हो, आते हो, यहां भी हमारी कोई जिम्मेवारी, इसका भी एक बोझ है। तीसरा, हम जिस देश में रहते हैं, जैसे पानी लेते हो, हवा लेते हो, उसको टैक्स देना पड़ेगा ना, विश्व का भी हमारे ऊपर ऋण है, देश ऋण कहते हैं उसको। तीसरा, चौथा एक ऋण है, हमने किए हुए कर्मों को खत्म करना, हिसाब किताब, नहीं तो भोगना पड़ेगा। और पांचवा एक हमारी जिम्मेवारी है, बाबा ने कहा भविष्य में उच्च पद पाना है, कुछ तो जमा करना पड़ेगा। जमा करेंगे तो उच्च पद मिलेगा ना। तो इतनी 4 प्रकार की कमाई करनी है, 4-5 प्रकार का ऋण है। सिर्फ ब्राह्मण जीवन हल्का नहीं सोचो, मुरली सुनी, 5 मिनट योग किया, सफेद कपड़े पहने, नहीं, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। तब ब्राह्मण कहा तो भगवान के नजदीक रहता है वो, और भगवान को उसकी मदद चाहिए। बाबा भी कहते, बच्चा आपके बिगैर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और शूद्रों का मदद नहीं लेता है, बच्चों का मदद लेता है ना। तो अभी ब्राह्मण बनते हो, ये 5 प्रकार का बोझ, इसको मुझे खत्म करना है, ये जिम्मेवारी हो, तो कभी भी आलस अलबेलापन नहीं आ सकता। एक मात्र माँ बाप का ऋण है, जहां जन्म लिया उनका भी हिसाब के, उनसे भी हमने कुछ लिया है, उनको भी देना पड़ेगा, उसके लिए भी कमाई चाहिए। और जिस देश में रहते हो, जहां रहते हो, वहां का भी हवा पानी 5 तत्वों का उपयोग करते हो, उसका भी ऋण है, उसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। फिर तीसरा, मैंने अपने जीवन में कितने पाप किए हैं पता चलता है, बताया आपको, मुखड़ा देख ले प्राणी, स्वप्न बताते हैं अंदर अभी भी क्या क्या भरा हुआ है, उसको मिटाना है, ये भी जिम्मेवारी है। और भविष्य के लिए जमा भी करना है, अभी मिटाया, ऋण मुक्त हो गए जाते समय खाली हाथ, तो कुछ जमा भविष्य के लिए करना चाहिए। क्या बनना चाहते हो उसके अनुसार जमा भी करना है। अगर ये 4-5 प्रकार की चिंता अगर है, तो आपके पास ये कौन, ये क्या कर रहा है, इधर उधर देखने की समय है, अब अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं, तब जाके पर चिंतन, निंदा, किसकी इधर उधर की बातें सुनो, सब ब्राह्मणों के पास समय नहीं है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी उसके पास। तब बाबा ने कहा कौन हो, विश्व कल्याणकारी हो। सिर्फ इतना छोटा सा नहीं जिम्मेवारी, इतनी सारे विश्व की जिम्मेवारी है। और विश्व को करने जाओ नहीं, पहले स्वयं से शुरू करो। चैरिटी बिगेंस एट होम, पहले स्वयं को संपन्न नहीं बनाया तो आप औरों को नहीं कह सकते हो। हो सकता है ये कि बहुत भारी है, बताओ, ये 5 प्रकार की जिम्मेवारी याद रहेंगी तो कितनी इंदौर में जाके जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, अपने पुरुषार्थ में अपने आप को व्यस्त करना है। और उसमें भी आप पूछेंगे ब्राह्मणों के लिए पवित्रता एक रखो, कोई कैसा भी हो, सिंपल चलो, साधारण जो कर सकते हो, किसी को देखते ही मेरे मन में उनके प्रति शुभ विचार आना चाहिए। अगर किसी कारण अशुभ आया, कर्म करते करते दाग लग सकता है, तुरंत साफ करो, तुरंत समझाओ, रे बाबा ने कल कहा था ऐसा नहीं, ऐसा सोचना चाहिए, तुरंत समझाओ। और ये कौन कर सकता है, होश में कौन रहेगा, किसी को एक एक घंटा चार चार घंटा भी होश नहीं रहता है, क्यों, मुरली आदमी है, मुरली के पॉइंट अगर जेब में रखते हो, मिनिमम 3 दफा अपने आप को पढ़ाते हो तो ज्ञान समझ है ये क्या, रोज बाबा अलग अलग पॉइंट रोज ले लो, एक ही नहीं और नए नए पॉइंट ले लो, तब आप देखना मुरली सुनते समय भी आपका मुरली पर पूरा ध्यान देता रहता है, आज बाबा नया क्या सुनाएगा जो कभी नहीं सुनाया, तो सारी मुरली पर अटेंशन रहता, नहीं तो होता वही का वही मुरली पॉइंट है तो अलबेलापन होता, नींद आने का कारण भी यही है, तब कहना पड़ता है कि अटेंशन दे दो, ध्यान दे दो, कुछ अच्छी चीज मिला तो ध्यान से देखेंगे ना, तो ये एक चीज चाहिए, एक पवित्रता भी आया, धारणा भी इसके अंदर है, अगर आपको कहो क्रोध नहीं करो, नहीं आप कोई जानबूझ के नहीं करता है, कोई जानबूझ के किसी को देखते विचार गलत विचार नहीं करता है, अंदर भरा हुआ है, तो जैसे वो भरा हुआ है ऐसे रोज ज्ञान के खजाने भी भरो, और जब कोई मिला ओम शांति करते हो इतना नहीं, ये पुराना हो गया, नया हर एक को मिलते एक मुरली के पॉइंट सुना, आदत डालो, बार बार मुझे सुनाना है, और जितनी दफा मुख से वर्णन करते हो उतने आपके अंदर संस्कार बनता है, तब बाबा ने कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ, तो ये जो संस्कार बना चलते फिरते कभी दो एक महीने के बाद एक साल के बाद याद आएगा उस दिन बाबा ने ये कहा था, तो वो अस्त्र है ये, जब परिस्थिति आएंगी ये अस्त्र काम करेगा, सिर्फ सुनने से जमा नहीं होता है, धारणा नहीं होती है, याद नहीं रहता है, जितनी दफा अपने मुख से एक ही पॉइंट रिपीट करो और उनको सुनाओ, मिलो बात करो, ज्ञान के अलावा इधर उधर का नहीं करना, कोई फायदा नहीं, ये 3 काम कर सकते हैं कि कठिन है, कठिन है, ब्राह्मण जीवन में कर सकते हो कि परचिंतन भी करना चाहिए, हाँ नहीं कभी सुनाता है कोई क्या करे, हाँ अगर ये भाई आके इधर उधर के बात सुनाता है सुन लो, क्योंकि परिवार है, एकदम ऐसा भी नहीं करते, सुनने के बाद जेब से निकालो, भाई जी आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, अपने आप समझ लेगा, है ना, किसके हरेक को अपने जेब, लेकिन वो आपको याद नहीं रहता उस समय, आप भी उसके प्रभाव में आते हैं, परवश हो जाते हैं, तो इसलिए ये संजीवनी बूटी स्वयं को भी और उनको भी, बेहोश वालों को होश में लाना है ना, तो मुरली के पॉइंट सुनाओ, किसी ने फोन किया सन्मुख नहीं आया, बात भी करना पड़ता है, परिवार है तो सुन करके उसको मुरली के पॉइंट सुनाओ, आप भी जागृत होंगे वो भी जागृत होगा, कर सकते हैं कि कठिन है, बताओ इंदौर वाले भाई बहन बताओ है, अगर ये एक काम कर दे 2 काम आप देखना, क्रोध आपके साथ आना भी चाहता है इंदौर वापस, तो आएगा नहीं, आए छूट जाएगा, हाँ तो एक दवाई लेगा तो अपने आप छूट जाएगा ना, अगर बुखार उतरो उतरो करेंगे उतरेगा, दवाई लेनी पड़ती है, तो यहां अभी आप 2-3 दिन हो तो रोज एक मुरली के पॉइंट अपने जेब में रखो, यहां से स्टार्ट करो और 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ, अगर कोई बोलना मिला भी भाई, भाई जी देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, मुख से बोलना भी चाहते हो तो मुरली के पॉइंट सुनाओ, नहीं तो बोलने की विधि बताया, किसी को देखते ही यहां से स्टार्ट करो, कहते हैं मन सारी बीमारियों का कारण है ना, गलत मन चंचल है तो उसको ठीक काम देना पड़ेगा ना, खाली मन शैतान का काम करेगा तो उसको एक, इसलिए भक्ति मार्ग में भी था, रास्ते पर चलते थे राम 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 कर हाथ में माला है ना, तो ये हाथ में माले के ज्योतनी मन में है, क्योंकि मन आध्यात्मिक, भौतिक में मुख था, मुख में किसी को देखकर गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए, भगवान का नाम रहे, अभी आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर मन में शिव बाबा सदा साथ रहे, तब बाबा ने कहा भगवान जिनके साथ है उनको आंधी तूफान कुछ नहीं कर सकता है, भगवान आपके साथ नहीं रहता है, आपके साथ रहेगा उसको अपना घर है, अभी एक बात बताओ जल्दी कि बाबा कहते दिल में दिला राम को रखो, तो दिल कहां है, बाबा कहते दिल से दुआई दे दो दिल से बाबा को याद करो, दिल में दिला राम को रखो, तो दिल कहाँ है वो? जवाब मैं दिया, फिर प्रश्न पूछता हूँ, लेकिन आपका ध्यान कितना है देखने के लिए? बताओ दिल कहाँ है? हाँ, बुद्धि में है? नहीं, बुद्धि का नाम है दिल। थोड़ा नजदीक पहुंच गए, चलो। तो उस बुद्धि में अगर आज की मुरली के पॉइंट याद है तो आपके दिल में दिला राम है। सारा दिन में पूछते रहो, आज मुझे बाबा ने क्या कहा? अगर तुरंत आता है ट्रैफिक कंट्रोल बजते ही, तो आपके साथ बाबा माना, बाबा अपने आप आके नहीं बैठता है, बाबा का श्रीमत आज्ञा है ना, तो उसकी श्रीमत क्या है? और रोज देता है बाबा, तो रोज अगर एक मुरली के पॉइंट आपको रात को भी कोई पूछे तुरंत आप बता सकते हो। तो दिल में दिला राम को रखो, बुद्धि में एक मुरली के पॉइंट होना चाहिए आज, कल सवेरे दूसरा डालो। इसको कहते दिल में, दिल माना ये दिल नहीं, बुद्धि। बुद्धि को ना तो संसार की बात याद रहती है, अगर कहो आप दुनिया की बात याद नहीं रखो तो एक कुर्सी पर तो दो व्यक्ति नहीं बैठेगा ना, एक ही बैठेगा ना, या संसार बैठेगा या बाबा बैठेगा, है ना, दोनों में से एक। तब बाबा को रखो तो वो बात नहीं रहेंगे, आएंगे नहीं। तो दिल में दिला राम को रखो, हो सकता है? कर सकते हैं ना कि कठिन है? कठिन लगता है तो बताओ, कोई कठिन तकलीफ है किसी को? मुरली के पॉइंट कल से जेब में रहेगा, डायरी में लिखना अच्छा है, लेकिन डायरी एक जगह रहती है ना, पढ़ते तो नहीं आए, है ना। हाँ, कमरे में रख दिया और आप एक जगह पर, सारा दिन आपके साथ में नहीं रहता है, लेकिन जेब में, तो तुरंत निकाल के पढ़ सकते। नॉलेज मस्ट बी अवेलेबल, जागृत होना चाहिए। ढूंढने जाओ बाद में पढ़ेंगे, बाद में वो कब आएगा? दूसरे दिन, है ना। सहज करो, जितना सहज है, सब बाबा कहते सहज राज हो गए, संसार में रहो, कर्म करो, करते हुए अपने आप को जागृत अवस्था में रखो। तो जो संसार में कर्म में चलते हुए गलत बातें होती है, किसी को देखते गलत विचार आता है, हाँ हरेक का व्यवहार अपना अपना होगा, लेकिन ये कभी इच्छा नहीं करना, सोचना नहीं कि इनको ऐसे करना चाहिए, नहीं, इनको अपना इच्छा है। अगर जबरदस्ती उनको इधर लाके बिठाओ तो बैठेंगे नहीं, कहता नीचे बैठना अच्छा है, इधर उधर हिल सकता है, यहां बैठेंगे स्थिर बैठना पड़ता है, हिलना नहीं पड़ता है ना। तो नीचे हरेक को अपनी इच्छा है, कोई जबरदस्ती किसी को राजा नहीं बन सकता है ना। तो इसके लिए आप कभी भी किसी से इच्छा नहीं रखो, इनको ऐसे करना चाहिए, इनको ऐसे चलना चाहिए, नहीं, ठीक है, जो जैसे करता है वैसा। हाँ, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, एक दफा प्यार से बताओ, बहन जी ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, एक दफा बताओ। लेकिन उनको ऐसे बैठने में आराम है, तो आप क्या, आप जबरदस्ती बिठाएंगे तो परेशान है। हाँ, एक दफा प्यार से, प्यार से बच्चों को भी, परिवार में भी एक दफा जरूर बताओ, बार बार नहीं। तब बाबा ने कहा शिक्षा देने का समय नहीं। और एक इसके लिए आपको, परिवार में अगर आप ब्राह्मणों को घर में शांति चाहते, एक काम और करो और देख लो, घर में अपने मन में शांति होगी। क्या है वो, हमने करके देखा, तब बताता आपको। अगर इन भाई जी को कुछ कहना है मुझको, वो कहने से पहले मन में संकल्प करो, बाबा ये आपका बच्चा, इसको ऐसे काम करना चाहिए, आज इसको ऐसे करना चाहिए, ये पहले सोचो, संकल्प करो, फिर मुख से बोलना। पहले मुख से बोलते हो वो काम नहीं करेगा। कहीं भी देखो, पहले राजा है, पहले जाते थे तो पहले अपने गुप्तचर को भेजते थे, दूत को भेजते थे, है ना। तो यहां संकल्प पहले पहुंचाना चाहिए, तब बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर योग में बैठे, सारे दिन का दिनचर्या में, आज इनसे मिलने जाना है, आज ये काम करना है, सवेरे उठ करके बाबा को बताओ, बाबा आज ये काम करना है, ये आपका बच्चा है, इन्होंने ये काम करना चाहिए, पहले से संकल्प भेजो। परिवार में भी, पति को, बच्चों को, किसी को कुछ कहना चाहते हो, शिक्षा देना चाहते हो, पहले मन में संकल्प करो, बाबा इस बच्चे को आप बताओ टीवी देखना नहीं चाहिए, पढ़ाई पढ़ना चाहिए, पढ़ाई नहीं पढ़ता है बच्चे को, मुख से एकदम नहीं बोलना, पहले मन में संकल्प करो फिर मुख से बोलना। संकल्प पहले पहुंचता है फिर वाणी है, ये एक प्रयोग करके देख लो। परिवार में पति को, किसी को कोई सुनते नहीं है, क्यों नहीं सुना, हमारे वाणी के अंदर ताकत नहीं है। तब बाबा ने कहा मनसा सेवा, मन के द्वारा संकल्प करो, फिर उसके बाद मुख से देखो आपका काम होगा। ये करने से क्या होगा, मन बाबा को देखो, बाबा ने कहा हर कर्म में बाबा को साथ रखो, हर संकल्प में साथ रखो। तो जहां बाप आपके संकल्प में है उसको कहते हैं पावरफुल वाइब्रेशंस। नहीं तो हमारे अंदर ताकत नहीं इतना, बहुत जन्म लेते हुए आत्मा इतने कमजोर हो गया है। तो बाप को साथ रखते हुए जो संकल्प करते हो उस संकल्प में सफलता। जो आज बाबा ने कहा हर कदमों में पदम समाये हुए है, शरीर के कदम नहीं संकल्प रूपी कदम आत्मा के है। तो बाप अगर साथ है तो सफलता है, नहीं तो सफलता नहीं है। ओके मंजूर। हाँ और एक बात याद रखना, अभी कल सवेरे योग में आते हो सभी इधर आके बैठना एक समय पर लाइन से, कभी पीछे वाला आगे आता है तो दूसरों को डिस्टर्ब होता, हमारे चलन से औरों के मन में विचार नहीं चलना चाहिए। और चारों धाम की यात्रा बाद में करना, अमृत वेले नहीं करना। अमृत वेले एक जगह पर, खाना खाते समय इधर उधर जाके खाना खाएंगे, एक जगह बैठेंगे ना, अमृत वेले आत्मा के अंदर शक्ति भरना है। 40 मिनट एक जगह पर, समय पर जल्दी आके आराम से अपने जगह पर बैठो। चारों धाम 5 मिनट इधर बैठे, 5 मिनट बाबा कमरे में गए, 5 मिनट छोटे हॉल में, वो सारा दिन दिन में है। चारों धाम सवेरे सवेरे नहीं। हाँ ये बहुत है, चार छोटे हॉल में भी जाना है, बाबा कमरे में जाना है, इधर भी जाना है, वो चारों धाम अमृत वेले, दूसरों को डिस्टर्ब होता है ना। सवेरे एक जगह पर, यहां आपका जगह, यहां कहीं भी बैठते हो एक जगह पर बैठो। फिर मुरली क्लास के बाद आपको समय बहन जी बताती है, अभी चारों धाम 10:30 बजे तक 5-10-15 मिनट इधर बैठो, 15 मिनट उधर बैठो, तो समय खाली है, कहीं गया नहीं, चारों धाम यहां ही है ना। बाद में करना, अमृत वेले नहीं, अमृत वेले एक जगह पर। हाँ अमृत वेले भी एकाग्रता से योग करना चाहिए। तो बाबा ने 3 बातें कहा था लेकिन आज टॉपिक नहीं था इसलिए नहीं सुनाया। देखो योग में बैठते नींद आती है, इधर उधर के विचार आते हैं, कि हमको अच्छी तरह से कंफ्यूजन होता है कभी कभी। याद अलग है, योग अलग है, तपस्या अलग है, ये 3 चीजें अलग अलग चीज हम मिक्स करते हैं। कभी भी बाबा ने योग का चार्ट नहीं कहा, याद का चार्ट लिखो, 8 घंटा याद, चलते फिरते याद करो। तपस्या अलग है, ज्वाला स्वरूप योग अग्नि में ही विकर्म विनाश होते हैं, वो ज्वाला स्वरूप चाहिए, निराकार स्थिति चाहिए। इन सबको कंफ्यूज करने से हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे, हम हल्के रहते हैं। हाँ चलते फिरते किसी को देखते ही मुरली के पॉइंट सुनाया, शुभ संकल्प किया, दुआएं दी, ये याद है, इससे विकर्म बनेंगे नहीं। लेकिन पहले किए हुए मिटाने के लिए ज्वाला स्वरूप चाहिए, योग अग्नि चाहिए, है ना। तब बाबा ने उसको 3 नाम बताए इंग्लिश में, एक है लाइन क्लियर, कनेक्शन क्लियर और रिलेशन क्लियर। जब तपस्या योग करने बैठते अमृत वेले, बैठते आराम से आके बैठो, इतने बाबा का चित्र बना रखा, आराम से देखते बैठो और अपने को रोज बाबा कहता आत्मा समझ मुझे याद करो। अब ये भाई कौन है मुझे पता नहीं, तो इसको समझना है तो मैं क्या करूंगा, 2-3 प्रश्न पूछेगा ना, भाई जी आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आप कहां से है, तब पता चल जाता ना। हर सेकंड देखो मैं शरीर हूं याद रहता है, हर सेकंड हम शरीर के भान में रहते हैं। कम से कम यहां बैठे हुए अशरीरी बनो, विदेही बनो, आत्मअभिमानी बनो, ये अलग अलग नाम है, एक ही। कैसे बनेंगे आप, तो अपने आप को जागृत करो, रोज पूछना बुद्धि से मैं कौन, नहीं मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं डॉक्टर हूं, ये स्मृति रहती है। यहां आके बैठते कम से कम अमृत वेले और शाम को 4 से 5:15, शाम को 6:30 से 7:30 जब बैठते हो आराम से फ्री होके बैठो, अपने को जागृत करो मैं कौन। किसको पूछा आपने, बुद्धि के अंदर समझ है, समझ से बुद्धि जवाब देती, हां मैं ये हूं, रटना नहीं है, राम राम नहीं करना है, तो समझ बुद्धि के अंदर है, तो बुद्धि ने जवाब दे, हां समझ आ गई, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर नहीं हूं कहने के नहीं, मैं आत्मा हूं। फिर मेरा रूप याद करो, मेरा ये रूप है। फिर मेरे 7 गुण है, 7 गुणों को याद करो, रोज जागृत कर, मेरे ये गुण है। फिर मैं शरीर को चलाता हूं लेकिन अभी योग में बैठा हूं, तपस्या करने बैठा हूं, इधर उधर कोई गया इधर देखा, कोई गया इधर देखा, गाड़ी चला रहे हो क्यों, तपस्या कर रहे हो, तब बाबा कहता एक स्थिर बुद्धि, स्थित एक एकाग्रता चाहिए, हिलना नहीं, आधा घंटा 15 मिनट बैठो लेकिन विधि पूर्वक बैठो। तब कहा अशरीरी बनो, शरीर का यूज योग में नहीं होता है, हाथ हिलना पाव हिलना, कोई गया इधर देखा नहीं, आराम से बैठो देखते, अपने आप से बात करो, यहां से परम धाम तक बात करते जाओ, मन बुद्धि से बात करते, ये दोनों अगर एक है तो व्यर्थ विचार विकल्प कहां से आएंगे योग में। हमें दो मुख है, एक है मन विचार करता है, मन तो कहता है मैं आत्मा हूं ज्योतिर्बिंदु चमक, अरे आज इसको फोन करना था, ये कौन बोल रहा है, खाली बुद्धि। तो बुद्धि को यही एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम में शिव बाबा आके पढ़ाता है, बच्चे मन बुद्धि मेरे से लगाओ तब करंट आएगा, एक तार जोड़ो तो करंट नहीं आता है। एक भारत है कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता, दो हाथ जोड़ता है, ये शरीर के आत्मा के भी दो हाथ है, इन दोनों को रोज एक करना है, फिर जोड़ते हो तब करंट आएगा। तो कैसे जोड़ेंगे, आराम से अमृत वेले बैठते हो, अपने आप से बात करते रहो, बैठते ही पूछो मैं कौन, बुद्धि के अंदर इधर उधर के विचार नहीं आएंगे, तुरंत मैं आत्मा हूं, मेरा रूप ले लो, मेरा रूप क्या है, मेरे गुण सातों गुणों को याद करो, मेरे कर्म मैं क्या करता हूं, शरीर को चलाता हूं, अभी शरीर को यूज नहीं करना, चलाना नहीं, हिलाना नहीं, शरीर का कोई काम नहीं है, क्यों बैठा हूं, शिव बाबा को याद करने, कहां है बाबा, ऊपर, ऊपर कौन है, सूक्ष्मतन है, सूक्ष्मतन में कौन रहता है, तुरंत बुद्धि ने जवाब देना चाहिए, नहीं तो मन ऊपर जा रहा है बुद्धि नीचे, तो बुद्धि के अंदर और कोई बात याद आएंगी, तो बुद्धि ये दोनों साथ होना चाहिए। तो बात करते जाओ, तो बुद्धि से बात करते हो, सूक्ष्मतन में कौन है, बुद्धि ने जवाब देना चाहिए, बुद्धि को यूज करो, ये सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय और कहीं नहीं सिखाते हैं। तो बुद्धि अगर खाली रह गई जरूर पुराने इधर उधर के बात याद आएंगी, अंदर भरा हुआ है कचरा। तो सूक्ष्मतन में कौन है, बाप दादा, क्या करता है वो, हाँ शिव बाबा का रथ है। परमधाम में कौन है, शिव बाबा है। कौन है वो शिव बाबा, कौन है, इस मार्केट में क्यों जा रहे हो, सब्जी मार्केट में जाके कपड़े मांगो तो मिलेगा नहीं, शिव बाबा के पास क्या है, सर्वशक्तिवान है। कौन सी शक्ति है बताओ, बाबा के पास मुख्य 8 शक्ति है, कौन सी शक्ति है वो, हाँ बाबा को भी समेटना पड़ता है, संसार है, समाना पड़ता है, ये तो आत्मा की शक्ति अष्ट शक्तियां है, शिव बाबा कौन, हाँ इसलिए पूछा, पता है योग में बैठने का, बाबा ने कहा बाप समान बनो, मेरा पिताजी क्या करता है वो मुझे करना है। शिव बाबा कौन, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, शिव बाबा शांत है, बाबा मुझे आपके जैसे बनना है, मैं आपका बच्चा हूं, मुझे आपके जैसे पवित्र बनना, रोज सवेरे सवेरे अपने आप को पढ़ाओ, मुझे आपके जैसा बनना, मैं आपका बच्चा हो, आप शांति के सागर हो, कभी गुस्सा नहीं करते हो, बाबा मैं भी आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगा, मैं आपका बच्चा हूं, बाबा आप सबको सुख देते हो, आप ज्ञान सुनाते हो, आप सदगति दाता हो, बाबा के 8 शक्तियां, एक पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुखहरता सुखकर्ता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता है, भाग्य विधाता और दिव्य बुद्धि दाता है। एक एक शक्ति ले लो, कंपेयर करो बाबा से, बाप क्या कर रहा है मैं क्या करता हूं। तब बाबा ने कहा बाप समान बनो, बाबा क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। तब कहते किसी को देख रहे इनके पिताजी जैसा लगता है, है ना, तब हमको देखकर बाबा दिखाई देना चाहिए, तो उसके जैसे कर्म हो, तो रोज अगर हम उनके चेकिंग बात करेंगे, आत्मा समझकर बाबा से कंपेयर करते हो, बात करते हो, उसको बाबा ने कहा आत्मा समझ बाबा से बात करो, कैसे करो, विधि चाहिए, मंजूर, इधर उधर देखेंगे नहीं, समय पर आके बैठो, आधा घंटा तपस्या चाहिए, हो सकता है ना, हाँ बाद में चारों धाम करना, सवेरे अमृत वेले इधर उधर नहीं जाना, कहीं भी बैठते हो एक जगह पर बैठो, क्योंकि आत्मा को खाना खाने का समय है, खाना खाते खाते उठते चलते फिरते खाना खाते नहीं, एक जगह बैठते हैं ना, आत्मा को शक्ति भरनी है, ये भोजन है, ठीक है, ओम शांति। भारी तो नहीं हुआ, अंदर गया कि ऊपर से तो नहीं गया, अंदर गया, हाँ क्योंकि पक्का इंदौर वालों को पक्का ब्राह्मण बनना पड़ेगा ना। हाँ बहुत सेवा करनी चाहिए। हाँ इसलिए देखो बहन जी ने दीदी ने आपको भेजा इधर, शक्तिशाली बन के आओ। बहुत आत्मा है, बहुत आत्माओं की शक्ति कैसे मुख से नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ याद रखो, ओम शांति।
ओम शांति। भाई जी ने हमें बहुत सहज आसान कर दिया ना, राहों को आसान कर दिया, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ज्ञान को जीवन में अप्लाई करना है। एक है ज्ञान सुनना, एक है उसके एप्लीकेशंस, दो चीजें होती है ना। तो अप्लाई कैसे करना है, अंदर में कैसे उतारना है और उसको व्यवहार में कैसे लाना है, कितने सुंदर तरीके हमें मिले हैं। मिले तो सचमुच ये जो तरीके हमें मिले हैं इनको जीवन में उतारेंगे, जब अगली बार आएंगे तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई जी को, भाई जी को कहेंगे अगली बार कहेंगे अब और आगे ले चलो, जो आपने दिया था वो हमने कर दिया, ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।